जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Giri Varadhari. Jayo Mishnupat Paramahamsa Parivrajakachari Ashtotrashata Sri Srimad His Divine Grace is Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jayo Mishnupat Paramahamsa Parivrajakacharya Ashtotrashata Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada Ki Anant Koti Vaishnavrunda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrunda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Sham Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Raja Bhumi Vrindavan Dham ki, Mathura Dham ki, Dwarka Puri Dham ki, Purushottam Kshetra Jagannath Puri Dham ki, Mayapur Navdeep Dham ki, Ganga Mai Yamuna Mai ki, Bhakti Devi Tulasi Devi ki, Kaliuga Pavan Harinam Sankirtan ki, Hare Krishna Mahamantra ki, Nitai Gaur Premanande, Samaveta Gaur Bhakta Vrinda ki, Samaveta Gaur Bhakta Vrinda ki, Samaveta Gaur Bhaktarunda Ki, Shri Guru and Shri Gauranga Ki, Nitai Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshwa Bhadrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama shloke Bhaktir Bhavati Daishthiki कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम की चौथी स्कंध से अध्याय क्रमांक 29। अध्याय का शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीनी बरही के मध्य वार्तालाप। श्लोक संख्या 65। तेन अस्य तादृशं राजन् लिंगिनो देह संभवं श्रद्धत्स्व अननुभूतो अर्थो न मनः स्प्रष्टुम् अर्हति। तेनास्य तादृशं राजन् लिंगिनो देह संभवं श्रद्धत्स्वानुभूतोर्थो न मनः स्प्रष्टुमर्हति। तेनास्य तादृशं राजन् लिंगिनो देह संभवं श्रद्धत्स्वाननुभूतोर्थो न मनः स्प्रष्टुमर्हति। तेनास्य तादृशं राजन् लिंगिनो देह संभवं श्रद्धत्स्वाननुभूतोर्थो न मनः स्प्रष्टुमर्हति। और तेनास्यस्तादृशं राजन् लिंगिनो देह संभवं श्रद्धत्स्वाननुभूतोर्थो न मनः स्प्रष्टुमर्हति। माताजी में से कोई शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की तेन अतः अस्य जीव का तादृशम उसके समान राजन हे राजन लिंगिनः सूक्ष्म मानसिक आवरण वाला देह संभवम पूर्व शरीर में उत्पन्न श्रद्धत्स्व इसे तथ्य मानो अननुभूतः अनदेखा अर्थः वस्तु न कभी नहीं मनः मन में स्प्रष्टुम प्रकट करने के लिए अर्हति समर्थ है। अनुवाद अतः हे राजन सूक्ष्म मानसिक आवरण वाला यह जीव अपने पूर्व शरीर के कारण सभी प्रकार के विचार तथा प्रतिबिंब विकसित करता रहता है। मेरी बात को तुम निश्चय समझो। जब तक पूर्व शरीर में कोई वस्तु देखी हुई नहीं रहती तब तक मन के द्वारा उसकी कल्पना करने की संभावना नहीं उठती। तात्पर्य कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। भगवान कृष्ण में कृष्ण ही वास्तविक परम भोक्ता है। जब जीव उनका अनुकरण करना चाहता है तो उसे भौतिक प्रकृति पर स्वामित्व जताने की अपनी झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने का अवसर प्रदान कर दिया जाता है। यही उसके पतन का शुभारंभ है। जब तक वह इस भौतिक वातावरण में रहता है, मन उसका सूक्ष्म वाहन करता है, जो सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं का भंडार है। ऐसी इच्छाएं विविध शारीरिक रूपों में प्रकट होती है। श्रील नारद मुनि राजा से इस तथ्य को ग्रहण करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे अधिकारी हैं। निष्कर्ष यह है कि मन हमारी विगत इच्छाओं का भंडार है और हमें यह वर्तमान शरीर उन्हीं विगत इच्छाओं के कारण प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार इस शरीर में हम जो कुछ चाहते हैं वह भावी शरीर में प्राप्त होगा। इस प्रकार मन विभिन्न प्रकार के शरीरों का स्रोत है। यदि मन को कृष्ण भक्ति द्वारा शुद्ध कर लिया जाए तो भविष्य में आध्यात्मिक तथा कृष्ण भक्ति से युक्त शरीर ही प्राप्त होता रहेगा। ऐसा शरीर ही हमारा आदि रूप है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से कृष्ण का शाश्वत दास है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो समझना चाहिए कि वह इसी जीवन में मुक्त हो चुका है। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी द्वारा हुई है। इहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। जो मनसा वाचा कर्मणा भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है उसे भौतिक जीवन की सभी अवस्थाओं में मुक्त समझना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। हमें लोगों को भगवान की सेवा में सदा लिप्त रहने की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वही उनकी स्वाभाविक स्थिति है। जो निरंतर भगवान की सेवा में लगा हो उसे पहले से मुक्त समझना चाहिए। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। माम चयो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो शुद्ध भक्ति के दिव्य कार्यों में सदैव लगा रहता है वह तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके आध्यात्मिक पद पर ऊपर उठ जाता है। अतः भक्त त्रिगुणातीत और ब्राह्मण पद से भी परे होता है। ब्राह्मण रजो तथा तमो इन दो निम्न गुणों से दूषित हो सकता है। जो शुद्ध भक्त मानसिक स्तर पर अनुभव की गई भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है और काल्पनिक ज्ञान या सकाम कर्म से भी मुक्त होता है वह भौतिक परिस्थितियों से ऊपर उठा हुआ तथा मुक्त होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साघ्रजातं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना रघुन श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये दिव्य वाणी को दोहराने के लिए और ये सेवा करने के लिए मैं आप सभी का आशीर्वाद की याचना करता हूं। तो ये जो प्रसंग चल रहा है, तो ये नारद मुनि और राजा प्राचीनी बरही इन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। तो ये उपाख्यान अध्याय नंबर 25 से चालू हुआ, 25 से। तो पहले चार अध्यायों में 25, 26, 27, 28 ये चार अध्यायों में नारद मुनि ने राजा प्राचीनी बरही को पुरंजन की कथा सुनाई। तो करीबन 183 श्लोक, ये 183 श्लोकों में ये पूरी कथा नारद मुनि ने राजा को बताई। लेकिन ये कथा का तात्पर्य क्या है, तो ये दो शब्द आते हैं, उपाख्यान और आख्यान। आख्यान यानी कि डायरेक्टली कुछ बताना, और उपाख्यान यानी कि बताई हुई चीज को जरा और अधिक तरीके से अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, विस्तार करने के लिए कुछ कथा सुनाना। तो यहां पर ये पुरंजन उपाख्यान नारद मुनि ने सुनाया राजा प्राचीनी बरही को। तो जैसे छोटे बच्चों को कुछ बात कहने के लिए या कुछ करने के लिए बताया जाता है तो तुरंत वो स्वीकारते नहीं, तो ये एक छुरी या ये ब्लेड हाथ में मत लो, ऐसा बताया तो डायरेक्टली स्वीकारेंगे नहीं हो। तो फिर उनको कुछ स्टोरी बतानी पड़ती है, एक तुम्हारे जैसा ही बच्चा था, वो ऐसा खेल रहा था, वो खेलते खेलते फिर उसने ये छुरी हाथ में उठाई और उसके बाद उसके हाथ वो छुरी को हैंडल करते वक्त उसकी उंगली कट गई और उसके कारण फिर उसको अभी ये उठाने को नहीं होता, वो उठाने को नहीं होता। तो ऐसा स्टोरी बताने के बाद फिर वो बच्चा स्वीकारता है। तो ये राजा प्राचीनी बरही की परिस्थिति कुछ ऐसी ही थी, डायरेक्ट आध्यात्मिक उपदेश उसको समझ में नहीं आने वाले थे, इसलिए नारद मुनि ने इतनी बड़ी लंबी कथा सुनाई। लेकिन राजा प्राचीनी बरही भी वो इतने सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो राजा थे इसलिए उनको बचपन से ही बहुत ट्रेनिंग प्राप्त हुआ होगा, अलग अलग विषयों का अलग अलग शिक्षा उनको प्राप्त हुई होगी। लेकिन इतना कुछ ट्रेनिंग मिलने के बाद भी नारद मुनि ने बताई हुई ये स्टोरी का, ये कथा का तात्पर्य क्या है, मुझे क्यों इतनी बड़ी लंबी कथा सुना रहा है, एक दो घंटा चली होगी वो कथा, सिर्फ सुन रहे हो। तो ये उनका अज्ञान जो है ये उन्होंने छिपाया नहीं। आजकल लोग अज्ञान को छिपाते हैं और उनके भौतिक जो कार्यकलाप है या पुण्य को, अज्ञान को और सो कॉल्ड नॉलेज को छपवाते हैं। ये दो शब्द आते, छिपाते हैं और छपवाते हैं। तो पाप को छिपाते हैं और व्रत को या भक्ति को या सुकृति को छपवाते हैं, लेकिन वास्तविक उल्टा होना चाहिए, उसके अच्छे कर्मों को उसने छिपाना चाहिए और पाप को, अज्ञान को उसने छपवाना चाहिए, दूसरों को अवगत कराना चाहिए ताकि पाप से वो मुक्त हो सकता है और अज्ञान से मुक्त हो सकता है। तो ये 29 नंबर अध्याय के पहले ही श्लोक में राजा प्राचीनी भर ही ये स्वीकारते हैं कि आपने जो भी कुछ कहा ये मुझे समझ में नहीं आया।
भगवंस्ते वचोस्माभिर् न सम्यग् अवगम्यते कवयस्तद् विजानन्ति न वयम् कर्म मोहितः।
तो इसमें राजा बोल रहे, नारद मुनि को संबोधित करते हुए बोल रहे कि भगवान, तो भगवान की वाणी या भगवान का जो सच्चा प्रतिनिधि है उसको भी आदर पूर्वक भगवान ही बोला जाता है।
भगवंस्ते वचो या वचह अस्माभिर न सम्यक अवगम्यति,
अस्माभिर यानी कि हमारे द्वारा, खुद को ऐसा बहुवचनी बोल रहे हो, हमारे द्वारा आपका ते वचह तव वचह सम्यक न अवगम्यति, सम्यक यानी कि पूरी तरह से आपने जो कुछ कहा वो मुझे समझ में नहीं आया।
कवयः तद विजानन्ति,
तो जो कवि या बहुत बुद्धिमान, कवयः बहुत सारे ऐसे बहुवचनी या बहुत बुद्धिमान होने वाले लोग उसको समझ सकते हैं।
तद विजानन्ति न वयम् कर्म मोहितः,
हम जो बहुत कर्मकांड में लगे हैं, एक है कर्मी और दूसरा है कर्मकांडी, एक है अनऑथराइज्ड वे ऑफ एंजॉयमेंट कर्मी और दूसरा है ऑथराइज्ड वे ऑफ एंजॉयिंग कर्मकांडी, इन दोनों को आध्यात्मिक बातें समझना कठिन जाता है। तो यहां पर कर्मकांडी कर्मकांड करने वाले राजा प्राचीनी भरीश वो स्वीकार रहे हैं कि मैं केवल इसी जगत में कर्म करना ही परमोच्च समझकर उसके बाद सुख प्राप्ति में लगा था, तो इसलिए आपकी जो बात है वो मुझे समझ में नहीं आई।
तो फिर ये प्रश्न करने के बाद नारद मुनि दोबारा ये स्टोरी का पूरा तात्पर्य बताते हैं
कि पुरंजन कौन है, फिर ये वैदर्भी कौन है, इनके बीच में संबंध क्या है, ये नौ द्वार क्या है, ये पूरा वृत्तांत बताते हैं, विश्लेषण बताते हैं। और फिर प्राचीनी भर ही बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं कि मेरे जो उपाध्याय थे, जो फैमिली प्रीस्ट रहते हैं, उन्होंने जो भी बातें बताई उन्होंने ये बातें कभी नहीं बताई जो आप बता रहे हैं, तो आपके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूं। और ये अच्छी तरह से समझने के बाद अभी उनको और एक प्रश्न आया है, और वो प्रश्न उन्होंने इसी अध्याय का ये श्लोक नंबर 58 और 59, तो इसमें वो बोलते हैं,
कर्मण्या आरभते येन पुमान इह विहायतम अमुत्र अन्येन देहेन जुष्टानि सद स यद अश्नुते।
तो इस जीवन में कर्मणि आरभते येन, जिसके द्वारा कर्म प्रारंभ किया जाता है, तो वो देह तो इसी जीवन कालावधि के बाद खत्म हो जाता है।
तम विहाय पुमान इह,
इधर ही लोग वो देह को छोड़ देते हैं।
अमूत्र अन्येन देहेन,
अमूत्र यानी कि दूसरे जीवन में उसको कंप्लीटली दूसरा शरीर प्राप्त होता है, तो वो शरीर का और ये पहले लाइफ टाइम में जीवन कालावधि में हुआ, ये दोनों शरीरों का संबंध कैसे होता है? तो नारद मुनि ने जो पुरंजन राजा आगे जाकर वैदर्भ भी बनता है और इन दोनों के बीच में संबंध है ये सब बताया। तो ये प्राचीनी भरी को पहले पता भी होगा, कर्मकांड करने वाला व्यक्ति को आत्मा के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे बेनिफिट के लिए, या जिनकी बुद्धि बहुत स्थूल है, केवल स्थूल पदार्थों से बनी हुई चीज वो समझ सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म तत्वों को वो समझ नहीं पाते, तो उनके बेनिफिट के लिए, उनके फायदे के लिए प्रश्न कर रहे हैं कि एक देह और वो देह के द्वारा किए गए कर्म, ये दोनों इसी जीवन में खत्म हो जाते हैं, तो उनका संबंध अगले जीवन में होने वाला शरीर और अगले जीवन में मिलने वाले फल, कुछ पुण्य या पाप या सुख या दुख के साथ कैसे हैं? तो ऐसे ये दो प्रश्न हैं, या एक ही प्रश्न बोल सकते, थोड़ा सा बहुत डीप में जाएंगे तो दो दिखते हैं। शरीर का संबंध क्या है
और कर्म तो कुछ एक्टिविटी कुछ मिनट या घंटे चलती है और वो एक्टिविटी खत्म हो जाती है, लेकिन ये एक्टिविटी का अगले जीवन में होने वाले प्राप्त होने वाले फलों के साथ क्या संबंध है? तो ये प्रश्न का अभी उत्तर देते हुए नारद मुनि समझा रहे हैं, श्लोक नंबर 60 से आगे समझा रहे हैं। तो ये दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है? तो वो जो लिंग देह या सूक्ष्म देह उसका अस्तित्व है ये समझाने के लिए नारद मुनि उदाहरण देते हैं स्वप्न का। तो शास्त्रों में ये बहुत ऑथराइज्ड बहुत प्रमाण ये उदाहरण है, बाकी भी नियर डेथ एक्सपीरियंस पास्ट लाइफ मेमोरी या फोबिया वगैरह वो है, लेकिन शास्त्रों का उदाहरण है ये सूक्ष्म शरीर और आत्मा है ये सिद्ध करने के लिए सबूत देने के लिए ये स्वप्न का जो घटना है हर एक के जीवन में जो होती है तो वो उसका विश्लेषण देते हैं। येन एव आरभते कर्म तेन एव अमुत्र तत्पुमान भुंगते ही अव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। तो मनसा यानी कि मन के द्वारा ये जो लिंगेन लिंग देह यानी कि सूक्ष्म शरीर ये अव्यवधानेन व्यवधान रहित ये बना रहता है। ये भौतिक शरीर खत्म होने के बाद भी वो लिंग देह बना रहता है, तो उसी के द्वारा फिर व्यक्ति स्वप्न देखता है। श्लोक नंबर 61 में कहते हैं शयानम इमम उत्सृज्य श्वसंतम पुरुषो यथा कर्मात्मन्य हितम भुंगते तादृशेन इतरेन वा। तो शयानम श्वसंतम तो सोते वक्त व्यक्ति की सांस चलती रहती है, श्वसंतम शयानम तो उसको उत्सृज उसको त्याग कर यथा पुरुष हो जिस प्रकार पुरुष किसी अन्य शरीर में प्रवेश करता है स्वप्न में और वो स्वप्न में वो शरीर के माध्यम से कुछ भूंगते तो उसी प्रकार से वो मरण के बाद भी किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो ये स्वप्न का उदाहरण देते हैं। तो ये अव्यवधानेन ये सूक्ष्म शरीर बना रहता है। तो आजकल लोग ये सॉफ्टवेयर जिस चीज में है वो चीज बहुत आकर्षक बन जाती है, हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, जैसे मोबाइल में हार्डवेयर पार्ट्स है और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर है, टैबलेट है या लैपटॉप है कंप्यूटर है। तो जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक वो चीज आकर्षित बहुत अट्रैक्टिव नहीं बनती। तो आजकल लोग ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए बहुत सारा समय बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर को महीने का लाखों रुपए सैलरी है और वो सॉफ्टवेयर के अनेक अनेक वर्जन्स भी है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पहले विंडोज 95 98 2000 और अभी विंडोज 8 10 और ये मोबाइल के भी वर्जन 6 7 8 9 10। तो ये सॉफ्टवेयर जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं उसका अपग्रेडेशन या उसको डेवलप करने के लिए बहुत प्रयास चल रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे कि हमारे शरीर के अंदर भी वैसा ही सॉफ्टवेयर है, उसको भी डेवलप करना चाहिए, उसको भी हर साल उसको अपग्रेड होना चाहिए वो। लेकिन दुर्भाग्यवश जिन लोगों को ये भौतिक स्तर का सॉफ्टवेयर कैसा फंक्शन होता है इसके बारे में वो जानकारी भी नहीं प्राप्त करना चाहते, केवल यूज करते उसको। तो जैसे ये वाईफाई सिस्टम भी सूक्ष्म स्तर का साइंस है, तो एक जगह वो राउटर है वो इंस्ट्रूमेंट है और कुछ 10 मीटर एरिया में उसका इफेक्ट, जैसे हर रेलवे स्टेशन में वाईफाई रहता है तो उसका इफेक्ट ये मोबाइल में कैसा हो रहा है एग्जैक्टली वो साउंड वेव या जो सटल सूक्ष्म स्तर पर जो वेव्स है ये मोबाइल को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। और फिर उसका भी पासवर्ड होना चाहिए, केवल इधर टाइप कर रहे हैं और फिर वो पूरा सूक्ष्म स्तर का नेटवर्क आ रहा है, या कोई कार बुक करते वक्त भी ओला उबर बुक करते वक्त भी वो मोबाइल में पूरे आजू बाजू क्या कौन से व्हीकल्स अवेलेबल वो दिखाता है, उसका वो वन टाइम पासवर्ड आता है, ओटीपी आता है। तो ये कॉमन व्यक्ति है इतना डिटेल में कभी इंक्वायरी भी नहीं करता कि ये कैसे हो रहा है, वो केवल यूज करता है ये सूक्ष्म साइंस और आनंद भोगने का प्रयत्न करता है। लेकिन जो सही जिज्ञासु व्यक्ति है उसने ये सूक्ष्म तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए रुचि रखनी चाहिए। तो यहां पर नारद मुनि ये सूक्ष्म तत्व कैसे कार्य करता है तो उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो गीता एक्चुअली जो गीता में तत्व बताए तो उसका विश्लेषण भागवतम में है। तो गीता में भगवान ने केवल ऐसा हिंट दिया है कि ये सूक्ष्म शरीर कैसे कार्य करता है। तो 15वें अध्याय में भगवान एक श्लोक में बोलते कि ममे वांश जीवलोकी जीव भूत सनातन मन श्रेष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। सभी जीवात्माएं मम एव अंश, मेरे ही अंश है। तो वो कर्षति, वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, मन और पांच इंद्रिया, ये छह इंद्रियों के द्वारा बहुत संघर्ष कर रहे भोग या सुख प्राप्त करने के लिए। तो एक कैसा संघर्ष चल रहा है वो बताते हुए भगवान अगले श्लोक में कहते शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्नाव वायु वायु गंधान इवाशयात। तो इसमें वो बता दे कि शरीरम यद अवाप्नोति, शरीर प्राप्त करता ये जीवात्मा, और अतिक्रामति, प्राप्त भी करता है और गृहित्व और संयाति, छोड़ भी देता है। तो ये कैसे होता है? वायु गंधान इवाशयात। तो ये दोनों सूक्ष्म तत्व है, वायु भी और गंध भी। सूक्ष्म यानी कि जिनको हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उनका रूप क्या है, रंग क्या है, वो बता नहीं सकते। तो एक सूक्ष्म चीज दूसरे सूक्ष्म चीज को उठाती है। तो जरा नोट करेंगे तो एक है एक वचनी वायु एक वचन में है, और गंधान एक गंध नहीं है लेकिन बहुत सारे गंध। तो जैसे वायु वायु गंधान इव आशयात, आशयात यानी कि फूल, फूल में होने वाले जो पोलन ग्रेन्स है वो हवा उठाती है और आगे बढ़ती है। तो ये वायु की तुलना की गई है आत्मा के साथ, और ये गंधान इसकी तुलना की गई है अनेक इच्छाएं या वासनाओं के साथ। तो जिस प्रकार ये वायु अनेक सारे वासनाओं को पूर्व जन्म से उठाता है और अगले शरीर में लेके जाता है, तो ये केवल एक ही श्लोक में या एक 1/4 ऑफ द श्लोक वायु गंधान इवाशयात, इसका विश्लेषण यहां पर नारद मुनि ये परपोट दे रहे और प्राचीन भरी निमित्त बन रहे वो प्रश्न पूछने का। तो ये जो सूक्ष्म चीजें हैं ये जितने हद तक हम अच्छे तरीके से समझेंगे उतने हद तक हम भक्ति में ज्यादा तीव्रता से लग सकते हैं। तो इधर अगले श्लोक में ये सूक्ष्म शरीर एक्चुअली ये बना रहता है। तो मानव निर्मित जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो सकता है, जैसे कभी कभी हार्ड डिस्क में बहुत सारे फाइल्स रहते हैं, बहुत मेगाबाइट्स, इतना डेटा रहता है, लेकिन अगर कोई वायरस उसमें आ जाए तो हार्ड कॉपी, हार्ड जो सब्सटेंस है उधर ही रहता है लेकिन अंदर का डेटा सब खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान ने बनाया हुआ ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो कभी करप्ट नहीं होता, वो लाइफ आफ्टर लाइफ एक शरीर के बाद दूसरा में बना रहता है वो। तो हर एक जो काया वाचा और मन, ये तीनों से हम कार्य करते, कुछ एक्टिविटी करते, उसका कुछ सॉफ्ट कॉपी भी बनता है। जैसे कंप्यूटर में भी कोई कुछ भी काम करता है व्यक्ति तो आजकल एटो सेव होता है, पहले कुछ सालों के पहले मैन्युअली सेव करना पड़ता था कंट्रोल एस दबा के, लेकिन आजकल हर आधे घंटे में या कुछ मिनटों के बाद एटो सेव रहता है। यानी कि जो जो कार्य होता है उसका सॉफ्ट कॉपी बनता है और बाद में उस सॉफ्ट कॉपी के द्वारा कुछ हार्ड कॉपी भी बनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम जो भी ये वाचा के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा या तीनों से जो भी कार्य करते हैं उसका सॉफ्ट कॉपी ये सूक्ष्म शरीर में बना रहता है। और ये आगे के शरीर में कैरी होता है। तो इसका विश्लेषण ये एक्चुअली दो श्लोकों में दिया है। तो विशेष करके कर्म उसी जीवन में खत्म हो जाता है वो, लेकिन उसका अगले जन्म में हम मिलने वाला शरीर के साथ संबंध क्या है वो बताते हुए ये श्लोक नंबर 64 और 65। तो इसमें 64 में कहा है, नानुभूतम क्वच अनेन देहेन अदृष्टम अश्रुतम कदाचित उपलभ्येत यद्रूपम यादृक आत्मनि। तो ऐसी चीज जो अन या न अनुभूतम, क्वच और कदाचित, तो कहीं तो और कभी तो क्वच और उसका अर्थ है कुत्रचित और कदाचित, तो समवेयर सम टाइम हमने न अनुभूतम अनुभव न की हुई और अदृष्टम हमने न देखी हुई और अश्रुतम जो हमने सुनी नहीं, ऐसी चीज हम हमारे स्वप्न में या स्वप्न में देखते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने पहले वो कभी अनुभव ही नहीं की। तो उसी बात को ये श्लोक नंबर 65 में जो बोर्ड पर लिखा है, तेन अस्य सादृशम राजन लिंगिनो देह संभवम श्रद्धत्स्व अननुभूतोर्थो न मनः स्प्रष्टुम अर्हति। तो तेन यानी कि जो पहले श्लोक में कहा गया 64 में कहा गया उपलभ्येत, कि ऐसा मन कि जिसमें ये अनुभव न की हुई न देखी हुई न सुनी हुई चीजें भी आ जाती है स्वप्न में या उसके मन में आ जाती है, तो ऐसे ये वासना से भरा हुआ शरीर के द्वारा तेन अस्य लिंगिनः, तो ये जो जीवात्मा है जो ऐसा मन से युक्त है, तो उसने पहले जन्म में ही ये सब जो अनदेखी अनसुनी और अनुभव न की हुई चीजें पहले ही जीवन में उसने अनुभव की है और इसके कारण इस जीवन में उसका परिणाम उसको मिल रहा है, ये बात तुम श्रद्धत्स्व। तो नारद मुनि बता रहे श्रद्धत्व यानी कि तुम इसे तथ्य मानो, नो दिस टू बी फैक्ट, तो इसको एक्चुअली तथ्य है या उसको स्वीकारो। तो जैसे क्षमस्व क्षमा करो, वैसे ये श्रद्धत्स्व तुम श्रद्धा के साथ इसको स्वीकारो, क्योंकि इसका उत्तर भी बताते क्यों श्रद्धा के साथ तुम स्वीकारो, तो अननुभूत एक है अनुभूत अनुभव किया हुआ एक्सपीरियंस्ड और उसकी पहले अन लगाया है। तो संस्कृत में ये नियम है कि स्वर से चालू होने वाला अगर शब्द है और उसका विरुद्ध अर्थ का शब्द बनाना है तो अन जोड़ना चाहिए। तो जैसे एक, तो एक के विरुद्ध अगर शब्द बनाना है तो पहले अन जोड़ना चाहिए और दोनों मिलकर फिर अनेक हो जाएगा वो। तो इधर वैसा ही अनुभूत एक्सपीरियंस्ड न किया हुआ, अनुभूत अर्थ यानी कि वस्तु, कोई भी चीज अगर अनुभव नहीं की है तो वो मनः न स्प्रष्टुम अर्हति, मन में आ ही नहीं सकती वो। तो ऐसा कुछ, ऐसे कुछ स्वप्न है कि जो स्वप्नों के बारे में हमें लगता है कि हमने ऐसी चीज कभी जीवन में देखी ही नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस जीवन में नहीं देखी होगी, लेकिन भूतकाल के जीवन में उसने जरूर उस अनुभव किया है। तो ये जो सूक्ष्म साइंस है एक्सपीरियंस, तो हम जिनके भी साथ इंटरैक्ट करें तो वो व्यक्ति को मिलने वाला एक्सपीरियंस उसको आगे जाकर ऐसा ही परिस्थिति होने वाली है, उसके मन में वो एक्सपीरियंस आने वाला है। इसलिए जो भी इंटरेक्शन हम दूसरों के साथ करते हैं या हम भी जिस भी परिस्थिति में रहते कि कौन सी परिस्थिति मुझे अनुभव करनी है और कौन सी परिस्थिति को अनुभव नहीं करना है, तो ये हमारे हाथ में है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में भी बहुत विस्तार से बता रहे हैं कि एक वाक्य बहुत जरा जोर देकर प्रभुपाद कर रहे हैं, हमें लोगों को भगवान की सेवा में सदा लिप्त रहने की शिक्षा देनी चाहिए। तो ये हम में से हर एक का कर्तव्य है। तो आज का या अभी जो महीना चल रहा है भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन या गीता मैराथन का, तो उसके द्वारा ये हमें बात मन में बहुत बहुत इम्फोसिस देकर ऐसा एकदम इम्प्रिंट करनी चाहिए कि मैं लोगों के सूक्ष्म शरीर को डेवलप करने के लिए मदद कर रहा हूँ। एक्सटर्नल शरीर को डेवलप करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए तो बाकी सभी एजेंसियाँ काम कर रही है, लेकिन मैं लोगों को ही उनका सूक्ष्म शरीर डेवलप करने के लिए भगवान की तरफ से माध्यम बन रहा हूँ। क्योंकि उनकी जो भी केवल शरीर ही मैं हूँ ये समझकर जो भी गलतियाँ हो रही है तो उसको सुधारने के लिए मैं एक माध्यम बन रहा हूँ। तो एक जगह मैंने एक वाक्य पढ़ा था, गलती करना प्रकृति है, उसको स्वीकारना संस्कृति है और उसको सुधारना प्रगति है। तो बहुत थॉटफुल सेंटेंस है ये। हर एक व्यक्ति उसके स्वभाव के अनुसार गलती करेगा ही, तो ये प्रकृति है, गलती करना प्रकृति है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना। हमारे जीवन में भी हम ये सूक्ष्म ज्ञान न होने के कारण बहुत सारी गलतियां करते प्राइवेटली या पब्लिकली। तो ये जो पहली बात मैंने कही थी, पाप को छिपाना नहीं चाहिए, तो ये गलतियां होती हैं लेकिन उसको स्वीकारना चाहिए, तो यही संस्कृति है और फिर आगे उसको सुधारना ही प्रगति है। तो ये सूक्ष्म स्तर का जो नॉलेज है ये प्राप्त अगर होगा तो हमारी भी अवस्था, प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं एक जीवन मुक्त व्यक्ति का, या गीता में और एक उदाहरण दिया है कमल का उदाहरण दिया है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसः। तो जो भगवान को समर्पित करते हुए, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, तो जो भगवान को समर्पित करते हुए या काया वाचा मन से भगवान को समर्पित होकर कार्य करेगा तो वो जीवन मुक्त है। तो इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया का नहीं होगा वो। तो जैसे ये नारियल, तो बहुत बार किसी जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है या धार्मिक कार्यक्रम है उधर हम जाते तो हमको श्रीफल दिया जाता है, वो नारियल दिया जाता है। तो नारियल ही क्यों दिया जाता है, बाकी दूसरा फल क्यों नहीं दिया जाता? तो उसका एक उत्तर ये भी बताया है कि हम ये नारियल आपको दे रहे क्योंकि आप ये नारियल जैसे हो, ये शेल के अंदर वो बहुत कठिन रहता है, हार्ड रहता है, उसके अंदर होते हुए भी उससे वो चिपका हुआ नहीं है। तो उसी प्रकार से आप भी इस दुनिया में हो लेकिन आप इस दुनिया से चिपके हुए नहीं हो, बहुत आसक्त नहीं हो। तो ये उसका सिग्निफिकेंस है, लेकिन बहुतांश लोग केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर मेरे बुजुर्गों ने ऐसा किया इसलिए मैं भी जो गेस्ट आएगा उसको ये शॉल और श्रीफल ये दो चीजें देना ये प्रथा है। लेकिन उसके स्वीकारते वक्त हमें ये बात माइंड में रजिस्टर होनी चाहिए कि जिस प्रकार ये नारियल अंदर होते हुए भी चिपका हुआ नहीं है तो उसी प्रकार से मुझे मेरी पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए। या कमल भी वैसा ही है, वो कीचड़ में जन्मता है लेकिन कीचड़ का एक बूंद भी, पानी का एक बूंद भी उसके ऊपर रहता नहीं, उसके पन्नों के ऊपर भी और पंखुड़ियों के ऊपर भी नहीं रहता। तो ये पूरा नॉलेज जो हम हर दिन डिस्कस करते हैं तो उसका ये ग्रेजुअली चिंतन मनन होकर हम ये जीवन मुक्त का जो स्तर है और विशेष करके ये एक्सपीरियंस वाला जो मुद्दा है, अनुभूत जो अनुभव नहीं की हुई ये चीज वो हमारे मन में आ ही नहीं सकती। तो ये प्रिंसिपल हम हमारे लिए भी अप्लाई करें और जो लोग हमारे संपर्क में आएंगे या मंदिर में आएंगे उनको ऐसा अनुभव रहे कि आगे जाकर उसका कुछ इफेक्ट उनके जीवन में प्रकट हो जाए। तो ऐसा
ये सीख आज के श्लोक से हम सीख सकते हैं। तो इधर ही मैं विराम देता हूँ प्रवचन को। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।